वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
दोस्तों, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं मरियम मेहरदादी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। आइए पहले सूरह अहज़ाब की आयत क्रमांक 22 की तिलावत सुने।
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما।
और जब ईमान वालों ने शत्रुओं के सैन्य दलों को देखा तो कहा, ये तो वही चीज है जिसका ईश्वर और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था, और ईश्वर और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इस चीज ने उनके ईमान व आज्ञा पालन ही को बढ़ाया।
पिछले कार्यक्रमों में अहज़ाब युद्ध में मिथ्याचारियों के व्यवहार के बारे में बताया गया था। यह आयत सच्चे ईमान वालों के व्यवहार का उल्लेख करते हुए कहती है कि ईश्वर व उसके पैगंबर पर वास्तविक ईमान रखने वालों ने जब शत्रु की सेना को देखा तो कहा कि ईश्वर ने इससे पहले ही कुरान मजीद की आयतों में इस बात की सूचना दे दी थी कि पिछली जातियों की तरह तुम्हें कठिन घटनाओं और शत्रु के हमलों का सामना करना पड़ेगा।
पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे पहले कह दिया था कि अरबों के विभिन्न कबीले और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा अंत करने के उद्देश्य से एकजुट हो जाएंगे। इस आधार पर सच्चे ईमान वालों ने जब इन परिस्थितियों को देखा तो मिथ्याचारियों की तरह रणक्षेत्र से भागने के बजाय दुश्मन के सामने मजबूती से डट गए, और उन्होंने दिखा दिया कि वे ईश्वर और उसके पैगंबर के आदेशों के समक्ष नतमस्तक हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि ईमान वाला व्यक्ति जानता है कि अत्याचारी शत्रु उसे छोड़ने वाला नहीं है, अतः वो हमेशा दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार रहता है।
अपने सभी मतभेदों के बावजूद काफिर इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने के लिए एकजुट हो जाते हैं, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी सभी संभावनाओं का प्रयोग करते हैं।
ईमान वाले अगर कम भी हों तब भी दुश्मनों के मुकाबले में डट जाते हैं, चाहे उनकी संख्या बहुत अधिक ही क्यों न हो। वे दुश्मन के मुकाबले में नहीं बल्कि ईश्वर के सामने नतमस्तक रहते हैं।
आइए अब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 की तिलावत सुने।
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا।
ईमान वालों में ऐसे बहुत से पुरुष मौजूद हैं जिन्होंने वो बात सच कर दिखाई जिसका उन्होंने ईश्वर से प्रण किया था, तो उनमें से कुछ तो शहीद होकर अपना प्रण पूरा कर चुके और उनमें से कुछ अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं, और उन्होंने अपने प्रण में तनिक भी परिवर्तन नहीं किया है।
पिछली आयत में सच्चे ईमान वालों के प्रतिरोध और दुश्मन के मुकाबले में डटे रहने की विशेषता का उल्लेख करने के बाद ये आयत कहती है कि ईमान वालों ने ईश्वर से प्रतिज्ञा की है कि वे ईश्वरीय धर्म की सहायता में तनिक भी ढिलाई नहीं करेंगे और इस मार्ग में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। इस प्रकार उनमें से कुछ बद्र व उहुद नामक युद्धों में शहीद हो गए, जबकि कुछ अन्य ऐसी परिस्थिति की प्रतीक्षा में हैं कि वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें और ईश्वर की राह में अपनी जान न्यौछावर कर दें।
वे अपने इस प्रतिज्ञा व प्रण के पालन में तनिक भी ढिलाई नहीं दिखाते और युद्ध में शहीद न होने पर दुखी होते हैं, जबकि कमज़ोर ईमान वाले कोशिश करते हैं कि युद्ध में भाग ही न लें, और अगर युद्ध में भाग लें और उनकी जान बच जाए तो वे बहुत खुश होते हैं। इसके बाद अगर कोई युद्ध हो तो वे उसमें भाग लेने के लिए तैयार भी नहीं हैं।
इस आयत से हमने सीखा कि ईमान की दृष्टि से सभी मुसलमान एक स्तर के नहीं हैं और उनके विभिन्न दर्जे हैं। उनमें से कुछ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, जबकि कुछ अन्य ईश्वर के मार्ग में शहादत की प्रतीक्षा में हैं।
ईश्वर के धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने की तैयारी ईमान में सच्चाई और ईश्वरीय प्रतिज्ञा के पालन का चिन्ह है।
सच्चे ईमान वाले व्यक्ति अपने मित्रों और प्रियजनों की शहादत देखकर हिम्मत नहीं हारता और जिहाद से पीछे नहीं हटता, बल्कि वो स्वयं भी शहादत की प्रतीक्षा में रहता है।
आइए अब सूरह अहज़ाब की आयत क्रमांक 24 और 25 की तिलावत सुने।
لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا
یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ایشور سچوں کو ان کی سچائی کا پرتیفل دے اور متھیاچاریوں کو چاہے تو دنڈ دے یا چاہے تو ان کی توبہ سویکار کر لے۔ نشچے ہی ایشور اتینت کشماشیل و دیاوان ہے، اور ایشور نے کافروں کو کوئی لابھ حاصل کیے بنا ان کے کرودھ کے ساتھ یوں ہی لوٹا دیا، اور ایشور احزاب کے یدھ میں ایمان والوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اس نے انہیں لڑائی سے آوشکتا مکت کر کے وجئی بنا دیا، اور ایشور اتینت شکتیوان و اجے ہے۔
یہ آیتیں احزاب یدھ کے پرینام کا اُلیکھ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جن سچے ایمان والوں نے شترو سے مقابلے کے لیے سینیہ وستر دھارن کیا، اپنے آپ کو اسلام کے مارگ میں نیوچھاور کرنے کے لیے تیار ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، وہ ایشور سے اپنا پاریتوشک پراپت کریں گے، چاہے دو گٹوں کے بیچ یدھ ہوا ہی نہ ہو، اور ایمان والوں نے نہ یدھ کیا ہو اور نہ ہی وہ شہید ہوئے ہوں۔
جہاں تک بات متھیاچاریوں کی ہے، جو سوئم بھی یدھ کے سمبندھ میں ڈاواں ڈول رہے اور دوسروں کی بھاوناؤں کو بھی ڈاواں ڈول کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو وہ ایشوریہ دنڈ کے حقدار ہیں۔ ہاں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں تو ایشور انہیں اپنی دیا و کرپا کا پاتر بنا کر ان کے پاپوں کو کھما کر سکتا ہے۔
انیک ایشوروادی اور کافر بھی جو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اس پرکار کے شڈینتر کے مادھیم سے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں اور پیغمبر و مسلمانوں کا انت کر سکتے ہیں، بنا کوئی لابھ حاصل کیے واپس لوٹنے پر وش ہو گئے۔
اس گھٹنا سے ایشور نے مسلمانوں کو سکھایا کہ کبھی بھی دشمن سے نہ ڈریں، اور شتروؤں کو بھی جان لینا چاہیے کہ ایشور کی یکتیوں کے مقابلے میں ان کی چالیں پربھاوہین ہیں اور وہ ایشوریہ شکتی پر وجے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی کارن ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے ایک جٹ ہو کر رنک شیتر میں آنے والے شترو کرودھت ہو کر مدینے سے واپس لوٹ گئے اور اپنی اچھا پوری کرنے میں وفل رہے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ کیول بات میں سچائی پریاپت نہیں ہے، کرم میں بھی ایشور سے کی گئی پرتیجا کو سچ کر کے دکھانا چاہیے، اور ایشور کے دھرم کی مدد میں ڈھلائی نہیں کرنی چاہیے۔
ایشور کی دیا و کرپا کسی سے دور نہیں ہے، یہاں تک کہ پرتیجا توڑنے والے متھیاچاریوں کے بارے میں بھی آشا ہے کہ وہ توبہ کر کے ایشوری کشما کا پاتر بن سکتے ہیں۔
جیون کے وبھن معاملوں میں کیول بھوتک سمیکرنوں پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایشوریہ سہایتاؤں کی اور سے نشچت نہیں ہونا چاہیے۔